दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे करहत ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोलै ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप चवर तखत के मालिक कलयुग के जहाज शब्द गुरु साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी अभी अभी आप बहुत ही सुंदर इलाही वाणी का कीर्तन सुन रहे थे। कलयुग में कीर्तन प्रधान, इस कलयुग में जबकि मनुष्य का मन बहुत अशांत है, चिंतित है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमेशा विचारों की दुनिया में ना खोया रहता। ऐसे समय में कथा और कीर्तन, मनुष्य के मन को शुद्ध करता है और जीने के लिए, आनंद पूर्वक जीने के लिए एक मार्ग बताता है। जैसा कि आप लोग साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन पवित्र वाणी श्लोक सहस कीर्ति, जिसकी कथा आप लोग लड़ीवार सुन रहे हैं, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश करते हैं क्रोध के बारे में के व्यक्ति क्रोध के चंगुल में फंसकर बड़ा से बड़ा विनाश कर बैठता है। क्रोध आता कैसे है और क्रोध क्या क्या नुकसान करता है हमारे जीवन में, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। हे कल मूल क्रोधं कदंच कर्णा न उपर्जते विख्यंत जीवं वश्यं करोत नृत्यं करोत जथा मर्कट अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तव संगे अधमं नरह दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक सर्व जी रखिया करोत। हे कल मूल क्रोधन, कल मूल फसादों की जड़, जितने भी झगड़े की जो जड़ है वो है क्रोध है। कदंच कदे भी करुणा न उपर्जते, करुणा करुणा का भाव है दया। तेरे अंदर कभी जो है सो दया नहीं है। हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते, तेरे अंदर कोई दया पैदा नहीं होता। नृत्यं करोत जथा मरकट है, मरकटे कहते हैं बांदर को, जैसे मदारी बंदर को पकड़ करके घर घर नचाता है, ऐसे ही व्यक्ति क्रोध के जब वश में आ जाता है ना, तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण हम लोगों को उपदेश करते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस। जब कोई इंसान विषयों का चिंतन करता है मन से, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुप जायते, जब विषयों का ध्यान करता है ना, तो उसके संग से विषय की प्राप्ति की इच्छा हो जाता है। संगात संजायते काम, और जब उस वासना की पूर्ति के लिए इंसान चल पड़ता है और कोई रुकावट आती है तो क्रोध पैदा होता है। जिसको भी क्रोध पैदा होगा, यदि उसकी इच्छा में कोई वस्तु है और विघ्न पड़ रहा है प्राप्ति में, तो उसको क्रोध होगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। और जब मन इच्छित वस्तु को पाने में कोई रुकावट पावे तो क्रोध पैदा हो जाता है। और जब क्रोध हो जाए तो क्या होता है? क्रोधाद भवति सम्मोहः, क्रोध से जो बुद्धि है वो मूढ़ हो जाता है। मूढ़ का भाव है, उसके अंदर विवेक करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है? क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। और जब जो बुद्धि है उसके अंदर विवेक जब खत्म हो जाता है ना, तो सम्मोहित होकर के उसको ये नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्मृति भ्रंसात बुद्धि नाशो, उससे बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर मनुष्य की जो है नाश हो जाता है। इसलिए क्रोध जो है, कभी कभी देखना गांव में थोड़े थोड़े जमीन के खातिर एक दूसरे को जान मार देते हैं और फिर सारी जिंदगी कचहरी का चक्कर लगाते। क्रोध से कैसे बचना चाहिए? भगवान बुद्ध से पूछा किसी ने कि क्रोध पर कैसे विजय पाया जाए, तो भगवान कहते हैं जब भी मन में क्रोध आवे तो उस वक्त उसको टाल दो कि हम कल उस पर क्रोध कर लें। कल नह विलंब धर्मं विलंब पापं। जब शुभ ख्याल मन में पैदा होवे तो तुरंत कर लो, और पाप करने की भावना होवे तो कल कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं। क्रोध मन में आवे तो कल कर लेंगे। एक समय एक सैनिक बुद्ध के पास आया और पूछता है कि स्वर्ग क्या है तो नरक क्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्वर्ग और नरक देखना चाहते हैं? कहते हैं हाँ जी देखना चाहते हैं। वो सैनिक था, बुद्ध ने उसको काफी कुछ बोलने लग पड़ा कि तुम तो नपुंसक लगते हो, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो कुछ नहीं है इसे। उसको निंदा भाव करने लगा, उसके अंदर क्रोध पैदा हो गया और तुरंत अपने म्यान से खड़ग निकाल करके बुद्ध के ऊपर चलाने लगा। कहता एक मिनट ठहर जाओ, कहते हैं यही नरक है। वो जो सैनिक था ना ठंडा हो गया और पश्चाताप करने लगा, और पश्चाताप करते हुए चरणों में गिर पड़ा। कहता यही स्वर्ग। नरक और स्वर्ग जब हम क्रोध में जीते हैं, हिंसा में जीते हैं, लोगों को बुरा करने की भावना में जीते हैं, तो नरक में जीते हैं। और जब हमारे अंदर भला करने की प्रवृत्ति होती है कि लोगों का हम अच्छा करें, तो उस वक्त हम स्वर्ग में जीते हैं। स्वर्ग और नरक हमारे मन की एक दशा है। हर एक इंसान स्वर्ग लेके जाता है, नरक लेके जाता है। एक समय की बात है कि एक गांव के बाहर एक फकीर बैठा था। दूसरे गांव से एक घुड़सवार आया और वो कहता है देखो हम इस गांव में रहना चाहते हैं, इस गांव के लोग कैसे हैं। वो फकीर कहता है पहले ये बताओ जिस गांव में तुम रहते हो उस गांव के लोग कैसे हैं, ये बताओ। वो कहता है उस गांव की बात मत पूछ, वहां के लोग बहुत गलत है, अच्छे नहीं हैं। वो फकीर कहता है कि देखो इस गांव के जो लोग हैं उस गांव से ज़्यादा खराब हैं, यहाँ कभी नहीं ठहरना। थोड़े देर के बाद वो चला गया, गांव में नहीं गया। घंटे दो घंटे के बाद एक घुड़सवार और आया और पूछता है फकीर साईं इस गांव के लोग कैसे हैं। फकीर फिर पूछता है कि जिस गांव से तुम आ रहे हो वहां के लोग कैसे हैं। कहते हैं मत पूछो, जिस गांव से मैं रह के आ रहा हूं वहां के लोग तो देवता हैं, हर एक का भला चाहते हैं, हर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो तो स्वर्ग है। फकीर कहता है मैं तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ बैठा हूँ, इस गांव के लोग तुम्हारे गांव से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वो जो घुड़सवार था उस गांव में चला गया। साथ में बैठा हुआ उसका चेला कहता है कि पहले आदमी को आपने कुछ कहा, इसको कुछ बोला, इसमें क्या राज। वहाँ पर फकीर कहता है कि जो व्यक्ति दूसरे में नुक्स देखता है, जिसका मन गंदा है, जो विकारों में फंसा हुआ है, वो जहाँ भी जाएगा उसको बुरा ही नज़र आएगा। शास्त्रों में लिखा है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर् भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है लोगों को भी वो वैसा ही समझता है। सत्संग जी हुआ क्या कि यहाँ पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, हे कल मूल क्रोधं, हे फसादादि जड़ क्रोध, झगड़े की जड़, हे क्रोध, कदंचा करना ना ऊपर जाते, तेरे अंदर कुछ दया नहीं है तो लोकानु साड़ फूकदा है। कठन क्रोध घट ही के भीतर, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी हम लोगों को उपदेश करते हैं, कठन क्रोध घट ही के भीतर, जो कठन क्रोध है वो घट ही के भीतर, हृदय के भीतर ही रहता है। कठन क्रोध घट ही के भीतर, जह सुध सब विसराई, क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति सब कुछ विसार देता है, भुला देता है। रतन ज्ञान सबको हिर लीना, तास्यों कछ न बसा। रतन ज्ञान सबको हिर लेना, जो विवेक है, ज्ञान है, वो सब चौपट कर देता है क्रोध। क्योंकि क्रोध आने पर बुद्धि में निर्णय करने की क्षमता नहीं रहती कि क्या सच है क्या झूठ है। ओना पास द्वास ना भिटिये, जिन अंतर क्रोध चंडाल, उसके पास कभी नहीं बैठ, पता नहीं कब सड़ फूक दे। गुरु महाराज कह रहे हैं ओना पास द्वास ना भिटिये, जिन अंतर क्रोध चंडाल, उसके पास कभी ना बैठ। जिसके पास बैठने से तुमको शांति महसूस हो, आनंद महसूस हो। आप देखिए आदरणीय बाबा जी हैं, वहाँ पर बैठो आपको उठने का मन नहीं करेगा, इशारा भी करेंगे आदरणीय विहंगम जन जी अब चलो काफ़ी देर, लेकिन जी अंदर से नहीं करता उठने का। क्यों? क्योंकि शांति आनंद अमृत बजता है। और जो जिसके अंदर विकार है, क्रोध है, उसको कहेगा भी ये खा लो, ये पी लो, ये और बैठ जाओ दो मिनट, नहीं जी ये काम है उठने का। काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिश भागो। साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए। क्यों के लख क्रोध विरोध, लख लख वैर करंदे। भाई गुरदास जी कहते हैं लख क्रोध विरोध, लख लख वैर करंदे, गुरसिख पोह न सकई साध संग मिलन दे। यदि साधु का संग मिल जाए तो कोई भी क्रोध उसको पोह नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। इसलिए साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, हे कल मूल क्रोधं, कदंच करुणा न उपर्जते, के हे क्रोध तेरे अंदर कोई करुणा नहीं, कोई दया ही नहीं है। सत्संग जी, साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गुरमत का प्रचार करते करते जब हसन अवदाल गए तो पहाड़ी पर जो है ना सो वली कंधारी रहता, वो करामाती था, सिद्धियां था उसके पास। वहां पर एक पानी का चश्मा था, उस चश्मा के पानी ही ये जो वहां के जो पास के गांव के लोग थे वो पीते थे। मुर्दाना तो फेमस है भूख और प्यास में, आप पढ़ो ना तो भूख और प्यास में बहुत प्रसिद्ध है। गुरु महाराज प्यास लगा है, प्यास लगा है, पहाड़ी के ऊपर एक चश्मा है, जाकर के वहाँ पानी पी लो। जब वहाँ पर गया पानी पीने के लिए पहाड़ी पर, तो वली कंधारी कहता है कि तुम्हारा गुरु बड़ी शक्ति वाला है, तो तुम उठे जाके पानी पी लो, यहाँ काहे को आया पानी। उसने पानी लेने नहीं दिया, वो लौट के आ गया। जब लौट करके आ गया तो गुरु महाराज जी ने उसी वक्त एक चश्मा पैदा किया और उसको पानी पिलाया। हुआ क्या कि वहाँ के जितने लोग थे गांव के लोग गुरु महाराज को बहुत आदर सत्कार मान्यता देने लगे। वली कंधारी जो है जल भून गया, जल भून गया। किसी को प्रतिष्ठा हो रहा हो ना तो दूसरे को सहारना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है ये काम। उसने क्या किया, क्योंकि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो सच्चे फकीर थे, अवतार थे, वो जगत को आनंद देने के लिए आए थे। लेकिन वली कंधारी जो था ने वो सिद्धियों के बल पर सिर्फ अपनी पूजा ही कराता था लोगों, हंकारी था। उसने हंकार में आके क्या किया कि गुरु महाराज नीचे बैठे हुए थे, जुड़े हुए थे रब के साथ, वो तो स्वयं ही रब थे। एक बहुत बड़ा पत्थर वली कंधारी ने नीचे जो है सो ढकेल दिया कि ताकि गुरु नानक देव जी से दब के मरते। लेकिन जो साक्षात स्वयं परमात्मा हो उसको कौन क्या कुछ बिगाड़ सकता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपना पंजा इस तरह लगाया, वो बहुत बड़ा पत्थर वैसे के वैसे टिक गया। वहाँ पंजा साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है, लोग दर्शन करने जाते हैं। क्रोध, देखो क्रोध की महिमा। ये जानता हुआ वली कंधारी जानता है कि गुरु नानक देव जी रब रूप हैं, लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर के उसको बुद्धि काम नहीं किया और बहुत बड़ा पत्थर जो है गुरु महाराज के ऊपर छोड़ो। साध संगत जी, इसी तरह से एक राजा अम्बरीश हुआ है, बड़ा धर्मात्मा राजा था, बहुत धर्मात्मा, और एक दुर्वासा ऋषि जो बहुत क्रोधी। देखो क्रोध में आके क्या कुछ नहीं करता है इंसान। राजा अम्बरीश बहुत धर्मात्मा राजा है, अपने प्रजा को सुख देता है और प्रभु की भक्ति करता है। एक दिन उसके राज्य में बहुत गरीबी छा गया। वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा देखो कि अपने राज्य की खुशी के लिए व्रत रखो तुम। राजा अम्बरीश कहता है व्रत क्या, मैं प्रजा की खुशी के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। इतना धर्मात्मा राजा था। साध संगत जी, उसने व्रत रखा एकादशी का। जब व्रत तोड़ने का टाइम आने वाला था तो 10,000 चेलों के साथ दुर्वासा वहां आ गया। दुर्वासा आ गया, कहता है राजन हम लोगों के लिए प्रसादे का भोजन की व्यवस्था करो। वहाँ पर राजा अम्बरीश कहता है सतवचन, आप बैठें। दुर्वासा कहता है कि मैं स्नान करके आता हूँ गंगा जी से। सारे उसके चेले, सारे लोग गंगा जी गए स्नान करने के लिए और काफ़ी देर लगा दिए। यहाँ जो एकादशी व्रत का जो समा था वो समाप्त हो रहा था। ब्राह्मण कहते हैं कि यदि आप समय से व्रत नहीं तोड़ोगे तो द्वादशी आ जाएगी और आपको बहुत उसका फल नहीं मिलेगा। आप ऐसा करें कि एक चम्मच जल ठाकुर जी को पिला करके उसका चरणामृत आप लेकर के तोड़ें, उससे कोई नुकसान नहीं। साध संग जी ब्राह्मण की बात मान करके ठाकुर जी पर एक चम्मच जल चढ़ाया, पंडित ने मंत्र पढ़ा और उस जल कर को पी कर व्रत तोड़ दिया। इतने में दुर्वासा आ गया और बस क्रोध, देखो क्रोध की क्या लीला है। गुरु महाराज कह रहे हैं ना, हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा ना उपर्जते, तेरे अंदर कोई दया ही नहीं है, तो हमेशा लोगों को भस्म ही करते रहता है, लोगों का दिलों दुखांदा रहता है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, कहता है राजन तुमको पता नहीं है कि जब ऋषि महात्मा को भोजन छका करके राजा को भोजन छकना चाहिए, अभी तक इतना भी ज्ञान नहीं। राजा कहता है देखो मैंने भोजन नहीं छका है, हमने व्रत इस तरह तोड़ा है ठाकुर जी को जल अर्पण करके उस जल को, लेकिन नहीं, वो क्रोध में आकर के उसने कमंडल से हाथ में पानी लिया, मंत्र पढ़ा, जमीन पर फेंका। वहाँ पर एक दैत्य पैदा हो गया, राक्षस। उसको दुर्वासा कहता है कि ये अम्बरीश को मार दो। वो खड़ग लेकर के अम्बरीश की तरफ दौड़ा और जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उसी वक्त भगवान का सुदर्शन चक्र, जो भक्त था ना, और भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी वक्त सुदर्शन चक्र जो है वहाँ पर आ करके अम्बरीश की रक्षा करने लग पड़ा, चारों तरफ परिक्रमा कर। पहली बार तो जिस राक्षस को पैदा किया था उसका गर्दन काट दिया सुदर्शन चक्र ने। इतना ही नहीं, उसके बाद वो सुदर्शन दुर्वासा की तरफ दौड़ पड़ा, दुर्वासा के गर्दन काटने की। दुर्वासा वहां से भागा, भागता जा रहा है। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गया, मुझे बचाओ, पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है, क्या किया। कहते हैं देखो ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा पावर इतना नहीं है, तुम जाओ शिव जी के पास। वो शिव जी के पास दौड़ा, शिव जी भी कहते हैं देखो तुमने जैसा काम किया है ना घटिया, उसके लिए रक्षा का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जिनका सुदर्शन चक्र है तुम उन्हीं के पास जाओ। वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु कहते हैं देखो ये सुदर्शन चक्र तो मेरा ही है, लेकिन मैं अपने को भक्तों के पास बेच दिया हूँ बिना मोल, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। तुमको कोई बचा सकता है तो अम्बरीश ही बचा सकता है। वहाँ से दुर्वासा दौड़ा दौड़ा आया राजा अम्बरीश के पास। देखो वो कितना भक्त था, कितना उसका हृदय। कहता है महात्मा जी आप चिंता ना करो, वो जो सुदर्शन आ रहा है मैं अपना छाती आगे कर देता हूँ, ये मेरा गर्दन काटेगा, आपको कुछ नहीं। जब वो आया दुर्वासा, दुर्वासा को उसने पीठ के पीछे कर लिया, आप पीछे आ जाओ। सुदर्शन ने इसकी महानता को देख करके उसकी प्रदक्षिणा किया और नमस्कार करके लौट गया। और वहाँ पर अम्बरीश प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान आपसे यही प्रार्थना है कि दुर्वासा का कोई नुकसान ना हो। यहाँ पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते। हे फसादादी जड़ सारे झगड़ों का गुरु, क्रोध तेरे अंदर कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, विखियंत जीवंग वश्यं करोत्। और तुम जो है लोगों के मन को तुम गंदा कर देता है। विखियंत जीवंग वश्यं करोत् नृत्यं करोत् जथा मरकट है। जैसे मदारी नचाता है ना बंदर को, ऐसे ही जब व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा होता है ना, तो देखना उसका शरीर कांपने लगता है। गुरु महाराज कहते हैं, काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सोहागा ढाले। क्रोध के समय में मनुष्य के श्वास की गति 64 गुना तेज हो जाती, इसीलिए वो जल्दी मरता है क्रोधी आदमी। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं कि मनमह क्रोध महा अहंकारा, पूजा करह बहुत विस्तारा, कर स्नान तन चक्र बनाए, अंतर की मल कभी न जाए। सात संग जी, एक समय की बात है कि एक राजा जन्मेजा था। राजा जन्मेजा एक यज्ञ कर रहा था। यज्ञ कर जहाँ पर हो रहा था, ब्राह्मण लोग 17-18 ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे। राजा जन्मेजा उसकी पत्नी दोनों बैठी थी। उधर से आंधी आया, आंधी आने से जो उसकी पत्नी थी रानी, उसका पल्ला सिर से थोड़ा नीचे हो गया। वो जो ब्राह्मण लोग थे थोड़े हंस पड़े। राजा जन्मेजा क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के जो 18 के 18 ब्राह्मण को जान मार दिया। देखो ये क्रोध क्या नहीं करता। ये जो सुबह से शाम तक जो घर में क्लेश होता है ना सास बहू में, ये तो प्रसिद्ध है। सिर्फ उसका जड़ जो है वो क्रोध है, क्रोध। और क्रोध के पीछे अहंकार काम करता है। जो मैं कहता हूँ वो ज़्यादा अच्छा, जो मैं कहता हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। उसने 18 ब्राह्मणों को जब जान मार दिया जन्मे जाने, तो ब्राह्मणों को जान मारने से क्या हुआ, उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़, उसका शरीर गल गया। जो इसलिए सत्संग जी, ये जो क्रोध है एक किसको नहीं नाश किया है, क्रोध को एक अग्नि कहा है। और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है उसका सब गुण, सारे तपस्या, सारी भक्ति सब जल जाता है। सबद वसै सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे। यहाँ पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे उपदेश कर रहे हैं, अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तव संगे अधमंग नरे। जब इंसान मर के जाता है तो जमदूत उसको बहुत ताड़ता है, बहुत डंडे मारता है उसको। तव संगे अधमंग नरे, इस क्रोध से कैसे बच सकता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपाय बता रहे हैं। दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक सर्व जी रखिया करो। हे सच्चे पातशाह, हे निरंकार, सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार। ये वाहिगुरु के चरणा से न प्रार्थना करे। दीन दुख भंजन, दीनों के दुखों को नाश करने वाला हे दयालु प्रभु परमात्मा, सर्व जिया रक्षा करो, जो सारे जीवों को रक्षा करता है, ऐसा जो वाहिगुरु है उसका हम लोग थोड़ा स्मरण कर लें। वाहे गुरु,
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 वाहे
गुरु। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं कि यदि तुम क्रोध की अग्नि से यदि बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, और वो क्या है? दीन दुख भंजन। दीन परमात्मा को दीनानाथ कहा है, अमीर नाथ नहीं कहा। किसी ग्रंथ में आप पढ़ोगे दीनानाथ। यहाँ पर दीनानाथ का भाव है कि जो नम्रतावान है, एक जो अहंकार से रहित है, हर जी अहंकार ना भावे। परमात्मा को अहंकार प्रिय नहीं है। जो परमात्मा के चरणों में दीन बन करके, नम्रता धार करके जब प्रार्थना करता है तो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे, परमात्मा उसी को पूरा करता है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक है। हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, हे सच्चे पातशाह, सर्व जिया रखिया करो। सारे जीवों के अंदर जो क्रोध है उसको नाश करके रक्षा कर लो, नहीं तो इस क्रोध ने सारे संसार को जला के रख देना। देखो एक दो इस दूसरे देश के साथ जो लड़ जाते हैं, हजारे लोग मारे जाते हैं बेचारे। ये देखो अफगानिस्तान, इराक में जो ये लड़ाइयाँ हुई, सिर्फ क्रोध और क्या चीज़, क्रोध के वशीभूत होकर के घर के घर उजड़ जाते हैं, घर के घर। हालांकि बाद में पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चुनिया चूके खेत। इसलिए साध संगत जी, साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह उपदेश है, जम दूत तिस निकट ना आवे, साध संग हर कीर्तन गावे, सगल मनोरथ ताके पूर्ण, जो श्रवणी प्रभु का जस सुना, जो श्रवणी प्रभु का जस सुना। दो बातें, एक प्रभु के शरण में जाके प्रार्थना करे, बेनती करे, और जस गावे, सिफत सलाह करे। क्रोध निवार जले हो ममता, प्रेम सदा नौरंगी, अनुभव बिसर गए प्रभु जाचिया, हर निर्मायल संगी। यहाँ पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, संसार सागर तिन्नी तरिया, जिन्नी एक ध्याया, तज काम क्रोध अनंद निंदा, प्रभ शरणाई आया। इसीलिए जो व्यक्ति वाहेगुरु के शरण में चला जाता है, वो क्रोध से रहित हो करके उसके अंदर प्रेम भक्ति जाग जाता है, जिससे लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।